Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tat Tvam Na Janami. कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो असौ स्वाहं यजाम ॐ शांति सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याण हेतुए पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः जागृतादि त्रयोन्मुक्तम् जागृतादिमयम् तथा ओंकार एक सुसंवेद्यम् यत् पदम् तन्नमाम्यहम् मांडुक्य उपनिषद इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं का विचार करके तुरीय तत्व को अर्थात जो सही स्वरूप है जीव का उसको समझाया गया। वेदांत ग्रंथों में मांडूक्य उपनिषद सर्वमान्य है और सभी संप्रदाय के लोगों ने इसका आदर किया है। सभी आचार्यों ने इस पर अपना अपना भाष्य भी लिखा। वेदांत की मुख्य बात ये है कि ये बुद्धि का आदर करता है। वेदांत बोध का सम्मान करता है, अर्थात किसी चमत्कार की बात नहीं करता कि ऐसे किया तो वो हो गया, कोई चुटकी बजाई तो उसमें से ये निकल आया, वहां गए तो ऐसा हुआ। ये जो बातें हैं जो बुद्धि में समझ में आए और अनुभव में आए और शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र भी उसका अनुमोदन करें। शास्त्र का मतलब है वो तपस्वी ऋषि हमारे पूर्वज, उनके अनुभव में भी आया हो, हमारी समझ में भी आ जाए और अनुभव में भी आ जाए तो वही वेदांत है। उसी को सत्य भी कहते कि सत्य को जाने बिना, सत्य को जिए बिना जीवन में सुख नहीं, क्योंकि झूठ में मिथ्या में वैतथ्य में तो सुख हो ही नहीं सकता। सुख का भ्रम हो सकता है, ये भ्रांति हो सकती है सुख की, लेकिन वस्तुतः सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहां पर उन्होंने ये बात कही है कि तीनों अवस्थाओं में रहता हुआ भी जो तीनों अवस्थाओं से अलग है ऐसे उस परम तत्व का मैं सम्मान करता हूं और वो परम तत्व मैं स्वयं ही हूं, ऐसा अनुभव में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। ये इस उपनिषद में कहा गया है। हम इस उपनिषद की ये सातवां मंत्र लेकर थोड़ा चिंतन कर रहे थे। इस उपनिषद में ये सातवीं श्रुति या सातवां मंत्र है, तुरीय आत्मा का स्वरूप समझाया गया आत्मा को। या यूं कहने के समझाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि समझने समझाने से तो वो तत्व बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है, ऐसा सबका अनुभव, और वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला भी नहीं है, लेकिन बिना बुद्धि के उसका बोध भी नहीं है। यही इसकी विचित्रता है कि बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आएगा, लेकिन बिना तीक्ष्ण बुद्धि के, बिना स्वच्छ सुस्वस्थ बुद्धि के वो तत्व पकड़ में भी नहीं आता। यहां उसको समझाने का जो ढंग अपनाया गया, इसको निषेध वृत्ति कहते हैं। निषेध वृत्ति का मतलब है जो सामने नजर आए, जिसको हम समझते हैं कि ये आत्मा नहीं, उसका निषेध कर दो, उसको मना कर दो कि ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं। इसी को निषेध विधि भी कहते हैं और इसी को ही अपवाद विधि भी कहते हैं। उसका अपवाद कर दो, उसको मिटा दो कि नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस सातवें ऋचा में ये बात कही गई, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न अंतः प्रज्ञम। अंतः प्रज्ञ भी वो नहीं है। अंतः प्रज्ञ का मतलब है तेजस तत्व। तेजस तत्व का मतलब है स्वपन देखने वाला, जिससे हम स्वपन देखते हैं। को इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जब वो कहते हैं कि मैं तेजस नहीं हूं, वो तत्व तेजस नहीं है, स्वपन देखने वाला नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि वो स्वपन में रहते हुए भी स्वपन को देखने वाला नहीं। आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ लें कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे विद्युत की ऊर्जा, जैसे बिजली ये बात कहे कि मैं फ्रिज में रहते हुए भी ठंडी नहीं हूं, मैं हीटर में रहते हुए भी गर्म नहीं हूं, मैं पंखे में रहते हुए भी स्वयं हवा नहीं हूं, मैं बल्ब में रहते हुए भी रोशनी नहीं है। बल्ब में भी, बल्ब में रोशनी भी है, लेकिन है उसी की वजह से, लेकिन वो रोशनी नहीं। इस बात को जितना जितना आप स्वयं सोचेंगे, उतना उतना आप इस के रहस्य को या इस तत्व को थोड़ा समझेंगे। जितना जितना इसके नजदीक जाएंगे आप, उतना उतना आपको स्वयं में डूबने का क्या अर्थ होता है ये बात समझ में आएगी। जितना जितना इससे बाहर रहेंगे, बाहर का मतलब है आप देखो, फर्ज करो यही एक फ्रिज की बात ले लो कि फ्रिज एक ले आए जो लेटेस्ट मॉडल का सबसे बढ़िया किस्म का फ्रिज हो, जो जिससे अच्छा और कोई ना हो, वो हम ले आए और लाने के बाद उस फ्रिज पैक कवर भी बहुत बढ़िया सा चढ़ा दें। अब उस कवर की भी खूबसूरती है, बहुत सारे तो उस कवर में ही उलझे रह जाएंगे, उसको बनाने में, उसको करने में, उसको संवारने में, कि ये बिगड़ ना जाए, इसको कोई छेड़े नहीं, इसी बात में। और फिर उस फ्रिज के अंदर कितने खाने हैं, कितने उसमें घर हैं, एक नीचे है, ऊपर है, ये रखो वो, दुनिया भर की उसमें चीजें, उनमें लगे रहे, उनका ही सारे ध्यान करें, और करंट हो ही ना, अगर बिजली ना हो उसमें, तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए अगर किसी तरह से बिजली या ऊर्जा बोल सके, तो ऊर्जा ये कहे कि मैं फ्रिज में रहते हुए चीजों को ठंडी करती हूं, लेकिन स्वयं ठंडी नहीं, मैं हीटर में रहते हुए सब कुछ गर्म कर देती हूं, लेकिन स्वयं गर्म नहीं, बिजली अपने आप में ना ठंडी ना गर्म, आत्मा अपने आप में ना जागने वाला ना सोने वाला, ना स्वप्न देखने वाला, स्वप्न में रहते हुए स्वप्न को प्रकाशित करने वाला होते हुए भी मैं स्वप्न नहीं हूं न अंतः प्रज्ञम, ये इसका अर्थ हुआ कि मैं अंतः प्रज्ञ नहीं हूं। अंतः का मतलब अपने ही अंदर अपनी ही चीजों को विषय, अपने को ही विषय करना, अर्थात बनना भी स्वयं और बनाना भी स्वयं, देखना भी स्वयं, दृश्य भी स्वयं, दृष्टा भी स्वयं, ये सब चीजें जहां हों, जहां दृश्य और दृष्टा अलग नहीं है, दृश्य भी स्वप्न में हम ही बने हुए हैं और दृष्टा भी हम स्वयं ही बने हुए हैं, तो मैं दृश्य में भी मैं हूं, दृष्टा में भी मैं हूं, दृष्टि में भी मैं हूं, लेकिन मैं इनमें से स्वयं कुछ भी नहीं, ना मैं दृश्य, ना मैं दृष्टि, ना मैं दृष्टा। ऐसा जब इस तत्व को जितना जितना आप उदाहरण ही है, ये जो हम बिजली का देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का देते हैं, उसका देते हैं, असल में बात ये है कि किसी भी चीज को समझाने के लिए शब्दों के माध्यम से अगर किसी भी बात को समझाना हो तो उस वस्तु में चार वस्तुएं होनी ही चाहिए, तभी उसे हम शब्दों के माध्यम से समझा पाएंगे, नहीं तो शब्दों के माध्यम से समझा नहीं सकते। उस वस्तु में जिसको हम शब्दों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, या तो कोई गुण हो, या उसमें कोई संबंध हो, या उसकी कोई जाति हो, या वो अनुभव में आया हुआ, उसको रूढ़ी बोलते हैं, या वो रूढ़ शब्द हो, अर्थात किसी भी वस्तु को अगर हम शब्द से समझाना चाहते हैं, बोलकर समझाना चाहते हैं, तो उसमें कोई गुण हो तो हम ये कहेंगे कि इस तरह इस गुण वाला, उसमें गुण में आप क्या है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कह लें, या आप उसको खट्टा मीठा लाल पीला कुछ भी कहें, तो किसी वस्तु में कोई गुण हो तो हम समझा सकते हैं कि अमुक अमुक चीज जिसमें हो वो है, या फिर कोई जाति सामान्य, जाति सामान्य का मतलब होता है पशु पक्षी जलचर थालचर मनुष्य, ये जातिवाचक शब्द है, जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य से एक जाति विशेष का ध्यान आ जाता है मन में कि ये पशु से अलग है, ये पक्षियों से अलग है, ये जलतर से अलग है, तो व्यावृत्ति जिसमें हो, जाति उसको कहते हैं जो बाकियों से अलग करके किसी समूह को बतला दे, तो जातिवाचक शब्द हो जाते हैं। तो कोई जाति हो तब भी हम ये कह सकते हैं कि अमुक जाति का, कोई गुण हो तो हम कह सकते हैं अमुक गुण वाला, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं शब्दों के माध्यम से उसको रूढ़िवाचक कहते हैं, रूढ़िवाचक का मतलब होता है कि वो किसी तरह से वो शब्द कोई वस्तु किसी शब्द के साथ जुड़ गई, कोई वस्तु किसी शब्द के साथ जुड़ गई का अर्थ है जैसे बाथरूम एक शब्द है, बाथरूम का मतलब तो होता है नहाने का कमरा, अगर हम डिक्शनरी को देखेंगे तो बाथ का मतलब नहाना है, रूम का मतलब कमरा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ हो गया लघु शंका जाना, कोई कहे मैं बाथरूम जा रहा हूं तो वो शब्द तो कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और हो गया, इसको रूढ़िवाचक कहते। क्यों ये ऐसा बन गया, कैसे ये ऐसा हो गया, इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई हम तर्क नहीं दे सकते कि इसको क्यों ऐसा कहेंगे, तो ऐसा कोई हो या तो रूढ़ी से, या ऐसे पंकज भी एक शब्द है, पंकज का अर्थ होता है कमल, वैसे पंक कहते हैं कीचड़ को और ज कहते हैं पैदा होना, पंकज का अर्थ होता है जो कीचड़ में पैदा हो, तो इस तरह से है तो शब्द कुछ हो, शब्द का अर्थ तो होगा जो कीचड़ में रहे लेकिन उसका अर्थ कमल का फूल है, तो ये रूढ़िवाचक शब्द हो गए। कई शब्द ऐसे भी होते हैं कि रूढ़ी से अपने अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, जाति से किसी शब्द के माध्यम से जातिवाचक वस्तु को बतलाया जा सकता है, किसी शब्द के माध्यम से गुणवाचक जिसमें कोई गुण हो उसको भी बतलाया जा सकता है, या उस वस्तु का संबंध हो किसी से तब भी बतला सकते हैं कि ये अमुक से इसका ऐसा संबंध है। संबंधों में ये संबंध भी है, अमुक का चाचा, अमुक का मामा, अमुक का ताया, ये व्यक्ति, ऐसे करके हम समझा सकते हैं किसी को। और वस्तुओं के संबंध से भी समझा सकते हैं। वस्तुओं के संबंध का मतलब होता है जैसे गिलास में पानी लाओ तो पानी और गिलास का संबंध है तो दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं, पानी किसको कहते हैं, गिलास किसको कहते हैं। तो इस तरह से संबंध हो दो वस्तुओं का उसको भी शब्दों से बोलकर समझा पाएंगे। गुण हो किसी में, कोई जाति हो किसी में, तब भी समझा पाएंगे। लेकिन जहां ऐसा तत्व हो कि ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई गुण है, ना उसका किसी से कोई संबंध है, आप ऐसा भी समझ लो कि शब्दों के माध्यम से हमेशा उसको बतलाया जा सकता है जो देश, काल और वस्तु की परिधि में आ जाए, लिमिटेड हो, जो सीमित हो। किसी देश में सीमित का मतलब है किसी जगह पर वो रह रहा हो, किसी काल में सीमित हो कि वो भूतकाल में था अब नहीं है, या भविष्य में होगा अब नहीं है। तो देश से सीमित हो, काल से सीमित हो, द्रव्य से, वस्तु से सीमित हो, अर्थात उसका कोई वजन हो, उसका कोई रूप हो, नाम हो, तब भी हम शब्दों में उसको बतला सकते हैं। तो शब्द हमेशा उसको बतलाएंगे जो सीमित हो। असीम को शब्द बस बतला नहीं सकते, अपने आप में एक शब्द है असीम जिसकी कोई सीमा नहीं। वस्तुतः ये शब्द भी आत्मा या परमात्मा को ठीक से बतला नहीं सकता, केवल इतना ही है कि हमारी भाषा के पास ये अंतम शब्द है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। भाषा इससे अधिक और कुछ कर नहीं सकती। भाषा इतना ही कर सकती है कि वो असीम है, वो व्यापक है, वो सब जगह पर है, वो फैल, वो नीचे ऊपर दाएं बाएं, ऐसा कह कह के हम उसकी निस्सीमता को, उसकी सीमा रहितता को, उसकी अपरिच्छिन्नता को बतलाते हैं। तो किसी भी परिच्छिन्न लिमिटेड वस्तु को शब्द बतला सकते हैं, लेकिन जहां वस्तु भी सीमित ना हो, कोई उसका रूप रंग भी ना हो, और हो भी वो व्यापक सब जगह पर हो, अंदर बाहर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना हो, तो उसको फिर शब्दों के माध्यम से बतला पाने का और कोई ढंग ही नहीं है। स्वायस के न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये जो बात हम कर रहे हैं, इसी बात को ही जितना भी आप स्वयं देखो, बात जैसे हम बाहर की चीजों में उलझ जाएं, इस बात का ही आप चिंतन करें कि जैसे सचमुच में विद्युत या बिजली की शक्ति या ऊर्जा ये कह रही हो कि फ्रिज में रहते हुए मैं सब कुछ ठंडा कर देती हूं लेकिन मैं ठंडी नहीं, हीटर में रहते हुए मैं सब कुछ गर्म कर देती हूं लेकिन मैं गर्म नहीं, बल्ब में रहते हुए मैं सबको प्रकाशित कर देती हूं लेकिन मैं प्रकाश रूप नहीं, और क्रिमेटरी ग्राउंड में रहते हुए, आजकल तो क्रिमेशन में जला देते हैं, अब शव को जलाना भी बिजली से शुरू हो गया, तो वो कह सकती है कि वहां मैं ऐसे जला के रख देती हूं लेकिन मैं स्वयं जलती नहीं। तो इस तरह से जितना भी हम इसका चिंतन करें उतना उतना आत्म तत्व के आप नजदीक पहुंचे, जो असली आपका स्वरूप है उसके आप पास पहुंच जाएंगे, और जो आपका असली स्वरूप नहीं है उससे आप अलग हो जाएंगे। देखो, आप ऐसा ही मान लो कि जो चीजें हमारे पास उधार की हैं, अगर उधार किसी से कुछ लाए हुए हो तो जिससे हम उधार लाए हैं वो उसको लौटाना पड़ेगा, या तो हम अपने आप लौटा देंगे और या फिर नहीं लौटाओगे तो एक दिन वो आ जाएगा, चाहे कोर्ट का सम्मन लेके और चाहे वो चार किराए के आदमी लेके आ जाए मारने के लिए कि मेरी चीज वापस कर दो। तो जो उधार की बात है वो आपको वापस करनी ही पड़ेगी, उसको आप रख नहीं सकते। अब आपका ये जो शरीर है, देखो इसमें मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी एक दिन ले ही लेगी, ये शरीर रहना नहीं, मिट्टी ने अपने जो उससे उधार लिया हुआ है वो ले जाए। जल तत्व आपका है, वो जल ने ले लेना है, वो चला ही जाएगा। आकाश ने अपना तत्व ले लेना है, वायु ने अपना तत्व ले लेना है, अग्नि ने अपना तत्व ले लेना है, वो सब ले लेंगे। लेकिन जो आप में चेतना है, जो आप चेतन हो, ये किसी से उधार ली हुई नहीं, ये आपका अपना स्वरूप है। इस बात को ही समझना है, उसी के ये सारे उदाहरण। जितना उसको समझ लोगे उतना ही आप इन सब दुखों से छुटकारा पाओगे जिनमें इस समय हम फंसे हुए, क्योंकि वो दुख हैं उधार की चीजों को अपना मान के बैठने के, और कोई चीज नहीं है। बस इतना ही है कि वो मिट्टी की वस्तु को हमने अपना मान लिया कि बस ये है, और उस अपने के लिए हम सारा कुछ करते हैं, जो भी काम करते हैं, बनाना, खाना, करना, कपड़ा पहनना, वो करना, ये सब उसी के लिए हो रहा। लेकिन अगर इतनी बात भी याद रह जाए कि असली स्वरूप, जो हम बार बार असली स्वरूप कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हम भी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो तत्व ऐसा है कि जिसको शब्दों के माध्यम से समझा पाना मुश्किल, लेकिन उसको समझ पाना आसान। अगर कोई समझना चाहे तो, अगर कोई विचार करना चाहे तो, उसके लिए वो सबसे आसान। उस अहंकार अर्थ यही है कि इस समय भी जब आप देखते हो, आप अपने आप को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर करके मानो, या आप अपने आप को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय करके कोशों के रूप में जानो, और या आप अपने आप को जिसको भौतिक शरीर, आकाशीय शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर, अशरीरी शरीर, ये सात भाग करके बौद्धों ने, जिसे हम पंचकोश विवेक कहते हैं, बुद्ध मत में महायानी जो उनका हिस्सा, उन्होंने सात कोश बना दी। ये कहा कि पांच नहीं, आपके सात रूप हैं। हमने किसी ने हमने तीन में भी बांट दिया कि बस तीन ही है, किसी ने पांच कर लिए, कुछ ने सात कर लिए। आम संप्रदायों में चार तक ही सब बातें रहती हैं, इसीलिए चार ही कदम बना दिए गए असलियत को पहचानने के। उनको चाहे आप श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार कह लो, या उसको आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय कह लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना मर्जी आप अपना विवेक करो कि ये अंत में ये भी बात बीच में आएगी कि ये सब कुछ होने पर भी पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण और जिनको हम तन्मात्राएं, विषय, दुनिया भर की बातें गिनो, लेकिन अगर बीच में चेतना ही ना हो, चेतन नहीं है, तो ये फिर क्या हो गया? तो फिर तो कुछ भी नहीं। तो ये जितनी भी आप चीजें गिनोगे उनका मूल आपको मिल जाएगा कि कहीं से आई है। अगर मिट्टी है हमारे शरीर में तो ठीक है, कुछ ना कुछ इसी मिट्टी को मिट्टी समझ लो जिस पे हम चलते हैं, समझ तो आती है ना कि ये मिट्टी है, ये पानी है, ये वो, लेकिन चेतना कहां से आई ये बात समझ में नहीं आएगी। तो चेतना कहीं से आती नहीं, क्योंकि चेतना तो है, इसके लिए है शब्द आया अस्ति, है का मतलब है उसका आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं, उस वो भूत भविष्य इसमें नहीं, और है का अर्थ होता है जहां भी जाओगे वहीं है, उसने कहीं भी, क्योंकि है शब्द, मैं शब्द, अहम शब्द, इन्हीं शब्दों को लेकर चिंतन हुआ है सारा। मुख्य बात मोटे तौर पर हम सब शब्दों को छोड़ दो, आप इतना ही देख लो कि जो चेतन है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है ये किसी से उधार आई हुई नहीं। इस बात को अन्य मत वालों ने, चार वाक वालों ने ये बात कही कि जहां ये इकट्ठी होती हैं, ये मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, तो इनमें चेतना अपने आप ही आ जाती है। ये उनका एक सिद्धांत है। और जब ये अलग अलग हो जाती हैं तो चेतना भी बीच में समाप्त हो जाती है, इसलिए मरने के बाद कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा जन्म नहीं है, दोबारा यहां पर आना नहीं है, यही एक जन्म है। और इस जन्म में बहुत ज्यादा इधर उधर की जरूरत नहीं है, तपस्या की और तप की, ये तो जन्म मिला हुआ है कि खाओ पियो और मौत करो। ये चार वाक हो गया कि आप जितना दिन भी जीना है दोबारा इस दुनिया में आना नहीं, इसलिए खाओ पियो खूब। और लेके उनका तो बड़ा प्रसिद्ध है ना, कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, कर्जा लो और खूब खाओ पियो मौज से रहो, क्योंकि दोबारा कोई जन्म नहीं। तो वो चेतना को स्वतः का मतलब होता है जैसे दो गैसेस को मिला दिया तो पानी बन गया। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे इन दो को मिला दिया तो पानी बन गया, पानी तो पहले था नहीं कहीं। ऐसे ही मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा एक विशेष मात्रा में मिलाई गई तो उसमें चेतना आ जाती है, इससे इंसान बन गया। चेतन तत्व तो कोई अलग से नहीं, आत्मा कोई अलग से नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, लेकिन वेदांत यही कहता है कि ठीक है, अगर इस तरह से चेतना बन जाती है तो यहां मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, इनको इकट्ठा करके आप एक आदमी बना के बतला दो, ये बने हैं, इनको लेके तो सारे वैज्ञानिक मिलके, सारे मिलके का आदमी बना दो, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी कि जैसे दो गैसेस से मिलके वो बन गया। या जैसे वो उदाहरण देते हैं नशे की वस्तुओं का, ये जो विस्की आदि बनती है ये फलों से बनती है, फूलों से बनती, कि फलों को ऐसा करके ये कर दो तो उसमें नशा पैदा हो जाता है अपने आप। ऐसे ही इन पांच तत्वों को इकट्ठा होते ही चेतना अपने आप पैदा हो जाती है, ये उन लोगों का कहना है।